नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का शीर्षक है प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित विभिन्न अनुभागों का अवलोकन भी किया। पिपरहवा अवशेषों का 1898 में पता चला था और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए अवशेषों को पहली बार एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। वर्ष 1898 में खोजे गए पिपरहवा के अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में 3 आदिम जनजातियों के नाम शामिल करने का निर्णय लिया है। इन तीनों समुदायों के मतदाताओं को इसके लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार ये जनजातियां बिरहोर, टोटो और साबर हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने खंड विकास अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में इन तीनों जनजातियों के मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को 5 निलंबित राज्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों पर मतदाता सूची में फर्जी या फिर अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने का आरोप है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी कर ग्रोक AI पर अश्लील सामग्री हटाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अश्लील सामग्री बनाने और साझा करने के लिए ग्रोक AI के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में मंत्रालय ने X के इंडिया ऑपरेशन के मुख्य अनुपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। उपयोगकर्ता ग्रोक AI सेवा का दुरुपयोग करके फर्जी खाते बना रहे हैं और महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो साझा कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए बनाई गई प्रमुख पहल प्रगति से परियोजनाओं और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। कल नई दिल्ली में श्री सोमनाथन ने कहा कि अब तक प्रगति की 50 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार बासागुड़ा क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद जिला रिजर्व गार्ड के एक दल को भेजा गया था। मुठभेड़ आज सुबह गगनपल्ली गांव के पास जंगल में हुई। सुबह से ही दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के संबंध में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंदौर नगर निगम में तैनात एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को नए पदों पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और सुधारात्मक उपायों के निर्देश भी दिए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी वीरामंगई रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीरामंगई रानी वेलु नाचियार एक साहसी शासक और दूरदर्शी नेता थीं, जिन्होंने औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होकर वीरता और असाधारण नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी वेलु नाचियार का बलिदान और दूरदर्शी नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति ने वीर पांड्या कट्टाबोमन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि वीर पांड्या कट्टाबोमन धरती के एक वीर सपूत थे, जिनका औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध साहस और प्रतिरोध देश के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।